نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي چار عادات ہم کر چکے اب انشاءاللہ ہم پانچویں عادت دیکھیں گے ابھی تک جو عادات ہوئیں ان کا صرف ٹاپک دہرا لیتے ہیں اور یہ بار بار دہرانا انشاءاللہ ہمارے ذہن کے اندر بھی تازہ رہے گا اور پھر ہم اپنا محاسبہ بھی تو کریں گے نا کہ کہاں تک پہنچے ہیں پہلی عادت ہم نے دیکھی تھی کہ اپنے اندر مثبت سوچ لانی ہے پازیٹیو ایٹیچیوڈ شکر گزار ہونا ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے دوسری عادت دیکھی تھی مستقبل پر نظر لانگ ٹرم پلاننگس کرنی ہے زندگی کو صرف ایک فن نہیں سمجھنا بلکہ قدم اٹھاتے ہوئے سوچنا ہے کہ منزل کہاں پہ آئے گی تیسری عادت ہم نے دیکھی تھی اہم کام پہلے یعنی فرسٹ کم فرسٹ زندگی میں پرائرٹائز کرنا ہے خود کو چوتھی عادت ہم نے دیکھی تھی جیتیں اور جیتنے دیں ون ون کل وتھ کائنڈنس اسی کا نام ہے کہ دوسرے کو اپنے رویے سے کل کرو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کچھ سخت بات کرو اس کو ایسے طریقے سے دیکھو کہ اس کی بے عزتی بھی نہ ہو اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر لے آج ہم دیکھیں گے پانچویں عادت اور بہت اہم ہے وہ ہے پہلے سمجھیں پھر منوائیں فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ بہت سارے لوگوں میں یہ خامی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے حالات کو سمجھے بغیر دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھے بغیر اپنی بات ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں بری لگتی ہے بات لیکن شکر ہے میں خود بھی عورت ہوں لیکن مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ بات بہت عام ہے اپنی منوانا چاہتی ہیں ماننے کی بجائے حالانکہ آپ دیکھیے کہ جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ بھی آپ کے برابر کا ہی ہے تقریباً عمر کم بیش ہو سکتی ہے لیکن دل اتنا ہی ہے دماغ آپ کی طرح ہے عقل ہے سوچ ہے سمجھ ہے چاہے آپ کے سامنے آپ کا کوئی بچہ کھڑا ہے یا آپ کے شوہر ہیں جو آپ سے رتبے میں بڑے ہیں یا آپ کی بہن یا آپ کا بھائی ہے برابر کا کوئی انسان ہے تو ان سب کے ساتھ آپ کا معاملہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کہ آخر اس کا بھی تو کوئی جذبات ہیں آخر یہ بھی تو کچھ سوچتی ہوگی نا آپ دیکھیے کہ ظلم بالکل ختم ہو سکتا ہے دنیا سے اگر ہم اس اصول پہ عمل کریں کہ پہلے دوسرے کی سمجھیں پھر دوسرے کی سمجھائیں آپ کہیں گے چلے دیکھا آج تو جواب مل گیا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں ہم بڑے مجبور ہیں ہماری مجبوریاں سمجھیں ہم بچوں والے ہیں ہماری سمجھیں کوئی کہے گا ہم فیملی والے ہیں ہماری سمجھیں ہر بندہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے لیکن ہم یہاں دیکھیں گے کہ اس پر پریکٹیکلی عمل کیسے ہوگا فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ اس کے لیے تصور میں لائیے ذرا ایک مثال آپ کسی جگہ جوتے خریدنے گئے آپ گئے یا کوئی دوسرا گیا سوچ لیجیے سیلس مین پوچھتا ہے آپ کو کیسے جوتے چاہیے آپ کچھ کہنے لگتے ہیں تو وہ آپ کی بات کاٹ کر کہتا ہے میں جانتا ہوں آپ کو کس قسم کے جوتے کی ضرورت ہے آج کل یہی جوتے ہیں یہ رواج ہے یہ ہے وہ ہے اور جو اس کے نظر میں کہ اس نے آپ کو بیچنے وہ لا کر بڑے بھونڈے انداز سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے آپ بتائیے کیا آپ اس کو پسند کریں گے وہ کہتا رہے یہ فیشن ہے یہ فلاں گلوکار نے پہنے اداکارہ نے پہنے اس نے پہنے اس نے پہنے آپ وہ لیں گے آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے آپ کہیں گے بھائی مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے یہ وہ نہیں ہو کہ نہیں میں 10 سال سے اس جگہ کام کر رہا ہوں بھلا مجھے نہیں پتا آپ کو کون سا جوتا چاہیے تو آپ اوفینڈ ہو جائیں گے بعض لوگ سیلس مینشپ میں اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں سوچنے کا وقت دیے بغیر اگلے کو بولنے لگتے ہیں یہ دیکھ لے ابھی وہ سوچ رہا ہے اپنے آپ کو تصور میں لا رہا ہے اس کپڑے میں میں کیسا لگوں گا لا کے جھٹ سے دوسرا کھول دیا یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں یہ پہن کے دیکھ لیں یہ دیکھ لیں آپ کہتے ہیں میں نے تو اتنے دکھائے کوئی بھی نہیں لیا اس نے وجہ کیا تھی کہ آپ نے اس کو سمجھا نہیں یہ چیز جو میں اس وقت بول رہی ہوں نا ہم تو اپنی زندگی کے معاملات میں اس کو دیکھ رہے ہیں نا لیکن یقین کریں کہ سیلس مین شپ میں اور زندگی گزارنے کے طریقوں میں یہ بہت اہم ہے کچھ لوگوں کے پاس اور کوئی گن نہیں ہوتا یقین کر لیں بلیو می صرف یہ گن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھ جاتے ہیں ان کی چوائس دیکھ لیتے ہیں وہ پہن کے کیا آئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں وہ آئے کس گاڑی میں سے نکل کے وہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں مثال دیتی ہوں کہ جیسے بعض لوگ ہیں دکان پہ کوئی آئے نا تو دیکھ کے کیا کہیں گے یہ لے لیں یہ بڑا سستا ہے میں نے ایک دفعہ ایسا تجربہ کیا بہت اللہ کی فضل والی کہہ لیں یا اللہ کی آزمائش والی سسٹر کو میرے ساتھ تھی پیسے کی ان کو کوئی پرواہ نہیں اب آپ سوچیے جو لوگ کس طرح کہتے ہیں وہ تو برانڈ نیم لینا چاہتے ہیں برانڈیڈ اور اچھی اور آپ دکان پہ جو تو کہتے ہیں भाजी इस पे सेल लगी हुई है, ये ले लें। जो ही सेल का लफ्ज उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा कि ये तो अब आउटडेटेड हो गया, मुझे नहीं अब मिलेगा। उनको तो वो चाहिए जो ये कहे कि ये आज ही आया है, आपको दिखाऊं एक ऐसी चीज़, वो नहीं कभी नहीं किसी ने देखा, अच्छा लाओ दिखाओ, फौरन भाजी मूड बना लेगी। इसी तरह बास लोग होते हैं, वो आते ही भावताव पूछते हैं कितने का ये सूट, आप कहते हैं कौन सा, नहीं पहले बताओ है कितने का, आप फौरन समझ जाएं कि ये मनी कॉन्शियस लोग हैं, इनको प्राइस मैटर करती है। और यकीन करें ये दुकानदार बहुत अच्छा करते हैं, मैंने कई लोगों को बड़े क्लोजली इस तरह ऑब्जर्व किया है, ले जाते हैं लोग उनसे चीज़, वो जिसको जो कहते हैं वो ले जाता है। वजह क्या है कि पहले समझते हैं फिर समझाते हैं। तेल देखो, तेल की धार देखो, हवा देखो, हवा का रुख देखो, और ये बहुत समझदारी की बात है, ये हिकमत माननी चाहिए। आप घर बैठे हैं, आपका बच्चा आया, आप बस सोच के बैठे थे ये आएगा, मैं इसको आते ही कहूँगी खाना खाओ और इसके बाद मेरे पाँव दबाओ और उसके बाद सो जाओ, ये आपने सोचा। वो घर में क्या आया और आपने साथ ही उसके सरिए दो तीन डांटें भी सोची हुई थी, इस पर डांटना उस पर डांटना, अब आप पूरा सोच के तैयार बैठे पूरे हथियारों से लैस। अब जो ही वो बच्चा अंदर आया, उसने बड़े आराम से झट दरवाज़ा खोला, जैसे अमूमन फ्रेंड्स को मिलने के बाद जो नशा होता है वो भी उतरा नहीं था, वो आपकी डांट से ही उतर गया था। आ गए हो घर, हाँ चलो इधर आओ खाना खाओ, ये करो, यकीन करो उसके वो ख्वाबों का जो शीश महल है ना वो टूट जाएगा। समझे ये किस मूड में आया, ये किधर था। देर हो गई, आपकी शौहर ने कहा मैं 5 बजे आ जाऊँगा, 6 बजे तक आप इंतज़ार करते रहे, नहीं आए वो, आप परेशान हैं, आप बाल हैं, बस यही करते हैं, जान के करते हैं। आप कहते हैं आ ले आज मैंने इनके सब वो करना है, ये नहीं करना, दिस एंड दैट का, ठीक है। समझने वाले जो होते हैं ना दूसरों को, फिर वो समझा भी लेते हैं। अच्छा बात सफ़ा बहुत मज़े की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं ऐसे मामलों में, कोई बात नहीं, कभी कभी रिस्क लगेगा, लेकिन आप पहले समझें। और किसी को समझना हो तो आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ना, चेहरा देखेंगे, मूड कैसा है, परेशान तो नहीं, दुखी तो नहीं, जल्दी में नहीं। अच्छा एक बहुत ही ऑब्जर्वेशन में आई है कि बस लोग जब घर में आते हैं, कोई भी आ रहा है, बेटा है, मियाँ है, जो भी आते हैं घरों में या आती हैं, उनको जेल में ले आए, आप पहले से तैयार थे उसको बहुत कुछ कहना है, और वो जो घर आता है उसको वॉशरूम यूज़ करना होता है। अक्सर लोग घर में बाहर कहीं स्टक हैं, जॉब से आए, अब वो घर में आया उसको सबसे पहले वॉशरूम में जाना है, तो आप शुरू हो गए उसको नसीतों का पोटला लेके, नहीं समझे ये किस सिचुएशन में है, इसका मसला क्या है इस वक्त, आंखों से पता चल जाएगा आपको, आपके अंदर थोड़ी सी भी हिकमत इंशाल्लाह आएगी। और मांगे कुरान के साथ हिकमत तो ज़रूर आती है और आनी चाहिए, नबी सल्लम भी और हज़रत उमर से भी मिलती जुलती कुछ दुआएं इस तरह की मनकूल है कि आप कहा करते थे कि अल्लाह मुझे चीज़ें वैसे दिखा जैसी उनकी हकीकत है। और एक मारूफ दुआ तो आपको कई दफ़ा कुरान के दौरान सिखाई है ना कि अल्लाह हमारी नल हक हक्कन वर्जुक न इतबाह, कि अल्लाह हक को हक करके दिखा और बातिल को बातिल करके दिखा, यानी ऐसा ना कि मैं हक को बातिल समझने लग जाऊं और उसको छोड़ दूं। ऐसे किसी तजुर्बे के तौर पर, सिर्फ एक अपनी किसी नफसियाती उलझन के तौर पर, बल्कि हक को हक करके दिखा कि मैं इस हक को अच्छी तरह से अवेल कर सकूं। फिर इसी तरह आप देखिए कि अब हम इस कंडीशन को जब अपने हालात के मुताबिक समझते हैं तो करें क्या, जैसे कि हम बाकी पॉइंट्स को देखते हैं तो हम उसको देखेंगे कि दूसरों की बात सुनने और लोगों में अपना अच्छा तासुर छोड़ने की कुंजी क्या है, कि बात समझें, कोशिश करें, समझ गए अब मनवाने की कोशिश करें। उसके अंदर करना क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने लेवल से, अपने हॉल में से बाहर आना पड़ेगा और साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। मैं नहीं कहती कि आप सारे अब साइकोलॉजी के किसी कोर्स में दाखिला ले लें, जो इंसानों को पढ़ लेते हैं वो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नहीं गए होते, हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग थे उनमें ज़्यादा सेंस थी, वो समझ जाते, कहते नहीं ये नहीं सही होगा। एक जुमला लोग बोलते थे कि इन तिलों में कोई तेल नहीं है, इन पत्थरों के आगे सर न फोड़ो, ये बड़ों के मुहावरे हैं और 100% सच है। वो कहते थे ये बाल हमने धूप में नहीं सफ़ेद किए हुए, आजकल तो खैर कहने की ज़रूरत ही नहीं, बचपन में सफ़ेद होते हैं, जल लगा के नहीं कर दिए और कोई कलर नहीं लगा दिया। तो हर बंदे की ये दिली ख्वाहिश होती है, आप अपने लिए अब छोटे छोटे टिप्स नोट करें। नंबर वन, ये यकीन रखें हर बंदे की ये दिली ख्वाहिश है कि उसकी इज्जत और कदर की जाए। लोग उस वक़्त तक अपना दिल आपके लिए नहीं खोलेंगे जब तक उनको आपसे हकीकी प्यार और तवज्जो ना मिले। एक दफ़ा आप किसी को तवज्जो दे दें, प्यार दें, आपकी तवक्को से ज़्यादा अपने राज खोल देगा। इसी का नाम अंडरस्टैंडिंग है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। आपकी शौहर से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी सास से नहीं है, आपकी अपनी अम्मी से नहीं है, बहुत सारे लोगों के अपनी माँ से ही नहीं होती, बस बेटों की बाप से कोई नहीं होती। तो आप इंशाल्लाह ये पॉइंट्स नोट करें, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में इससे ज़रूर खैर आएगी कि सबसे पहले ये सोचें कि इस बंदे को मेरी तरफ से इज्जत कदरदानी चाहिए, सच्चा प्यार दें, फिर आप देखें। बजाय कि किसी से बताएं ना, प्लीज़ प्लीज़, आपको मैं पर यकीन नहीं, मैं नहीं किसी को बताऊंगी। आप इसकी जगह उसका इत्माद जीतने के लिए कोई ऐसा काम करें कि उसको वाकई लगे कि आपको उसकी ज़रूरत है। मसलन एक बंदा है, उसको भूख लगी हुई है, सोचें, इमेजिनेशन में लाएं, अपनी अकल से सोचें कि इस वक्त ये बंदा जिन हालात में इधर से उधर है, इसको भूख लगी होगी, आप उसके सर पे सवार हो जाएं, मुझे बताओ ये करो, आपके यहाँ बैठो, चलो ज़रा फ्रेश अप हो जाओ, मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। आप देखेंगे कि इसी इज्जत और मोहब्बत में वो अपने आप को आपके सामने रख देगा। तो अपने आप को इस चीज़ पर यकीन रखें कि जितनी मैं किसी की इज्जत और कदर करूँगी, उतना ही दूसरा मेरे सामने अपना आप खोलेगा। एक छोटी सी पोइम है, बराए मेहरबानी मेरी बात सुनो, ऐसे ये सुनाती हूँ आपको। जब मैं आपसे कहूँ मेरी बात सुनो, बच्चे कहते हैं ना अम्मी बात सुनो, आप कहते चुप करो मैं फ़ारग नहीं हूँ, पीछे हटो। अच्छा, बाज़ बच्चे री 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 करके पीछे फिरते रहते हैं, और बाज़ मियाँ भी यूँ ही फिर रहे होते हैं पीछे। एक दफ़ा बैठ कर उनका मसला पूछ लें, चाहिए क्या, क्या खाना है आपने, क्या पीना है आपने, ताकि एक दफ़ा एक चीज़ को पीछे तो कीजिए। जैसे किसी से बात हो रही थी किसी की, तो उन्होंने कहा कि आप शादी करना चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं शादी तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं बच्चा नहीं पालना चाहता। मैं उस बात से क्या समझी कि शायद वो शादी करना चाहते हैं लेकिन उनको बच्चे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो कहते हैं मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी कि जो मेरे लिए एक बच्चा बन जाए, क्या मैं उसको भी पालना शुरू कर दूँ, मुझे समझदार लड़की चाहिए। अब आप देखिए कि ये छोटा सा जुमला है ना, लेकिन आप इसको देखिए कि लोग आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका छोटा बच्चा, यकीन करें ये दूध पीते बच्चे हैं ना, ये जो रो रहे होते हैं ना, ये असल में यही कह रहे होते हैं कि बराए मेहरबानी मेरी बात सुनो, मेरा पैंपर गीला है उसको बदल दो, मुझे भूख लगी है खाना दे दो, मुझे मोटे इतने चमकीले फैंसी कपड़े पहनाए हैं मुझे चुभ रहे हैं, ये अपनी आवाज़ों में हमें यही कह रहे होते हैं। तो जब मैं आपसे कहूँ मेरी बात सुनो और आप मुझे मशवरा देने बैठ जाएं, तो गोया आपने वो नहीं किया जो मैंने पूछा था। जब मैं आपसे कहूँ मुझे सुने और आप ये कहना शुरू कर दें कि क्यों, तो क्या मुझे ये महसूस नहीं करना चाहिए कि आप मेरे एहसास को चल रहे हैं। यानी जब कोई आपसे कहे मेरी बात सुने और आगे से आपके क्यों सुनो, तो इसका अंतर क्या आप उसके एहसास को चल रहे हैं। जब मैं आपसे कहूँ मेरी बात सुने और आप मेरे मसाइल के हल के बारे में सोचें, तो आपने गोया मुझे नाकाम कर दिया। सुनो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सुनो, कुछ मत कहो और करो, बस मेरी ज़रा बात तो सुनो। बाज़ दफ़ा हम अपने बच्चों और अपने घर वालों के मसले हल कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों में, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुन रहे होते। जब कोई बात सुनेगा नहीं ना, तो फिर उसके दिल की बात आप तक पहुँचेगी नहीं। फिर आप देखिए कि बात सुनने के कई तरीके होते हैं, पांच तरीके आपको बताती हूँ, इंतहाई नाकिस तरीके हैं बात सुनने के। सुन सुना रहे होते हैं लेकिन ख्याल कोई नहीं उसमें होता। पहला तरीका क्या है, बेदहानी से सुनना, अपने ख्यालों में गर्क, सोच ये रहे हैं कि कल क्या पकाना है, और बच्चा पास खड़ा पूरी बात सुना के चला गया। इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा आपकी इस आदत पर। आप देखें कभी आप किसी से बात करें, आवाज़ें जी, और साथ वो कंप्यूटर पर देख रहे हो, तो आप क्या कहते हैं, मेरी तो देखें। जब बेदहानी से कोई सुनता है ना, तो आपको खुद कैसा लगता है, यानी इस वक्त मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, और मुझे शक पड़े कि आप तो नीचे टेक्स्ट पे मैसेज लिख रहे हैं, तवज्जो कहीं और है आपकी, या आप तो सोच कुछ और रहे हैं, तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो बेदहानी से ना सुने। दूसरा बहुत ही भोंडा तरीका है किसी की बात सुनने का, कि सुनने की अदाकारी करना। सुन कोई नहीं रहे होते, ठीक है कुछ, अच्छा बीच में अगला पूछ लेना कुछ, अच्छा फिर आप बताएं, तो कहते हो फिर कहना ज़रा मैंने गौर से नहीं सुनी, मैं तो कहीं और थी, नहीं सुन रहे ना। बी क्लियर, बेटा इस वक्त वक्त नहीं है, बाद में आना। मियाँ तुमको कह दे इस वक्त मेरा जहन कहीं मसरूफ़ है, मैं आपकी बात फोकस नहीं हो सकूँगी। साफ कह, लोगों को इस पर नहीं गुस्सा आएगा कि आप इस वक्त नहीं सुन रहे, लेकिन ये डॉच करना और ये टीज करना कि मैं सुन तो रही हूँ लेकिन सुने ना, ये अगले को ऑफेंड कर देगी। तीसरा बहुत ही बुरा तरीका लिसनिंग का क्या होता है, कि आप मखसूस बातें सुनते हैं, और वो कौन सी होती हैं, जिसमें हमें दिलचस्पी होती है। मसलन कोई आपको अपनी कहानी सुना रहा है, मेरे अबू उधर है मेरे, और बाज़ लोग अपनी बातें बहुत करते हैं, अच्छा, दूसरे को उससे इतनी दिलचस्पी नहीं होती, उसको तो आपसे कोई दिलचस्पी होगी, आपके बाकियों से। वो अपनी वो बात पूरी सुनाते 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 हैं, और बीच में कोई ऐसी बात होती है जिससे आपका अपना फायदा होता है, तो आप उस वक्त सुन लेते हैं, बाकी बात नहीं सुनते। ये भी अच्छा तरीका नहीं। इससे एक और भी फायदा की बात समझ में आ रही है कि बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए दूसरे के साथ। अगर ये सुनने के तरीके ठीक नहीं है तो बोलना भी नहीं चाहिए। आप जब भी बोले ना, पहले चेक करें अगला आपकी सुन रहा नहीं। मुझे लगता है कि आप मेरी सुन नहीं रही बाद में। फिर उसके बाद एक और चीज़, आपको याद है कि हमने अपनी सीरीज के शुरू में बोलने की खामियां नोट की थी, मैं करके बोलना, पॉजेस लेना। अगर आप उसको साथ यहाँ मिला के इस वक्त सुनने को देखें तो आपकी इस लिसनिंग और आपका बोलना कितना अच्छा हो सकता है। ये जो लोग कुछ लोगों को पसंद करते हैं ना, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि हर दिल अजीज, उनमें यही राज होता है। छोटा बच्चा भी उनके पास आएगा ना तो हाथ पीछे, जी बेटा सुनाएं क्या करते हैं, कैसे हैं आप, किस क्लास में हैं, कैसे हैं, तो बच्चे कहते हैं वो अंकल बड़े अच्छे हैं, वो हमारे साथ बातें बहुत करते हैं। और उन्हीं अंकल की अब बीवी बेशक वो किचन में जाकर चल बाहर चल जा, तो वो उसको वो आंटी नहीं अच्छी लगेंगी। तवज्जो देनी पड़ती है ना बच्चों को, तो थोड़ी सी तवज्जो जब दें तो बच्चे को वाकई अच्छा लगता है। चौथा एक तरीका क्या है, अल्फाज सुनना। पता क्या कि पूरा जुमला सुनने में तो एक सोच लगती है ना, पूरी उसकी बात के साथ लेके चलना होता है, लेकिन बाद जब हम उसकी पूरी बात नहीं सुनते, कुछ ना कुछ लफ्ज़ बोल देते हैं उसका। मतलब कोई ऐसी बात है कि वो कहना क्या चाह रहा है, मिसाल है कि पूरे किसी के गुफ्तगू में से आपको भाई लफ्ज़ याद है, और आप बाद में कहेंगे हाँ वो अपने भाई की कोई बात कर रहा था। यानी आपने उसके जुमले को ही नहीं सुने, लफ्ज़ सुने, किसी का नाम, मतलब कोई कहता है फातिमा, थोड़ी थोड़ी देर बाद में बीच में वो फातिमा का लफ्ज़ बोलता है, तो उनको सिर्फ वो याद रहता है कि फातिमा की कोई बात थी, वो थी कौन, है क्या, उसका क्या है। ये भी अच्छा तरीका नहीं होता। पांचवा और आखिरी जिस पे हम आगे चलेंगे, और वो क्या है, ज़ाती नुक्ते नज़र से सुनना। बाज़ औक़ात हम हर बात को अपने नुक्ते नज़र से देखते हैं। इस मौके पर अमूमन ये कहा जाता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। दर हकीकत दूसरों के साथ साथ हमें अपने साथ साथ को सही रखना है। इस तरह की बातें कि आप अगले की सुन कम रहे होते हैं और उसको अपने एंगल से देख रहे होते हैं। मसलन कोई कहता है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, फौरन आप उसका जुमला काट के ना अपने भाई की तारीफें शुरू करते हैं, मेरा भाई तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मेरी भाभी नहीं इतनी अच्छी, ये है वो। यानी अगले की बात सुनते हुए आप अपना सोच रख रहे होते हैं, उसको नहीं सोच रहे होते, अपने ऊपर ले रहे होते हैं। तो लिसनिंग को इम्प्रूव कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करें, तो ये पांच हर्डल्स अपने रास्ते से निकाल दें। बेदेहानी से सुनना, सुनने की अदाकारी करना, मखसूस बातें सुनना, अल्फाज सुनना, और ज़ाती नुक्ते नज़र से सुनना। अब आप देखिए कि एक्टिविटी बन सकती है इस पर। आप किसी को समझना चाह रहे हैं तो समझने के लिए सुनना पड़ेगा। लिसन टू पीपल सिंसियरली, गौर से सुनिए, समझिए, फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह। इसे आप देखेंगे कि आपके दूसरों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, और जितना आप दूसरे को तवज्जो देंगे, आप जहन को खाली कर लें, जैसे शिर्क होता है ना, उस शिर्क की तरह इसको सोचें कि मैंने इसको डॉच किया इस वक्त। फिर अगली चीज़ क्या है, नतायज अखज करना। अक्सर औकात हम दूसरे की बात सुनते हैं तो जहन में कोई नतीजा अखज कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब अगर आप नतीजा अखज करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, तो गोया के बात करने लगी बात नहीं सुन रहे आप, उस वक्त क्या सोचते हैं, ये कोई मतलब है, लगता पैसे लेने हैं इसने। मिसाल देती हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ सके। कोई आपके पास आता है तो शुरू हो जाता है, आप इमेजिनेशन में लाएं अपने पाकिस्तान में खड़ी हैं, और आपकी मासी आपके पास आई है। अब वो बेचारी बात शुरू करती है कि बाजी वो मेहमान आ रहे हैं, और बाजी वो कपड़े लेने हैं। जब वो ये बातें कर रही होगी ना, तो आप फौरन किस नतीजे पे पहुंच जाते हैं, अब इसने पैसे मांगने हैं। तो बात सुनने से पहले ही उसका नतीजा अखज करते हैं, ये भी अंडरस्टैंड करने में गलती होती है। हम पहले से अपना फ्रेम ऑफ माइंड सेट कर चुके होते हैं, इवन हम दूसरों को देखते ही उस नज़र से हैं जैसा हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, तो लिहाजा ये भी तरीका दुरुस्त नहीं। फिर एक और चीज़, वो क्या है, नसीहत। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने तजुर्बात की रोशनी में गुफ्तगू के दौरान दूसरे को नसीहत करना शुरू कर देते हैं। मसलन एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, एक जज्बाती बहन जिसको सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है, अपने भाई से कहती है, मुझे अपना नया स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। सोचिए एक भाई और एक बहन है, बहन बड़ी जज्बाती है, सुनने की ज़रूरत है उसको, लेकिन अपने भाई से कहती है मुझे अपना नया स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद, मैं ख़ुद को अकेला महसूस करती हूँ, मेरा दिल करता है मेरे और दोस्त हों, दिस एंड दैट, ये और वो। अब ऐसी बहन जब ये बातें करती है तो उसके भाई को क्या करना चाहिए? उस वक्त उसका दिल बहलाए, कोई बात नहीं, आज अकेली हो, कल दोस्त बन जाएंगे, अब ये होगा वो होगा, तुम ये करो वो करो। इस वक्त अगर वो इसको ये राय देने की बजाय नसीहतें शुरू कर दे, नहीं ना ठीक करो तुम खुद को, कुछ नहीं होता, तुम्हें ज़रूर कोई ख़राबी होगी इसीलिए तुम्हारे पास कोई नहीं बैठता, तो वो पसंद नहीं करेगी। अंडरस्टैंड कीजिए, यकीन करें, गुनाहगार से गुनाहगार बंदा जिसको आप दुनिया में कहें ना, उसके अंदर भी एक धड़कता हुआ दिल और खुद को सच्चा कहता हुआ इंसान होगा। रॉबिन हुड ऐसे ही तो खुद को नेक नहीं कहता था, कहता था अमीरों से लेके गरीबों को देता हूँ दौलत। चोर चोरी करने वाला भी कहता, नहीं मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने चोरी कर ली, मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं बड़े लोगों का माल लेके छोटों को दे रहा हूँ। हर बंदा अपनी नज़र में कुछ ना कुछ तौर पे रकीक जज्बात रखता है, लिहाजा आप सोचें। फिर एक और टिप अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की, क्या है कि तहकीक करना। ये कैफियत उस वक्त जन्म लेती है जब आप दूसरों को कुछ कहने से पहले ही उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। कभी किसी ने आपके साथ ऐसा किया है कि आपके साथ कोई मामला हुआ, आप उसी मामले की नज़र से दूसरे सारी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। मसलन एक छोटा सा आपको डेमो बताती हूँ कि जैसे मिसाल है कि एक माँ अपने बिल्कुल टीनेजर लड़के से पूछती है, हेलो बेटा क्या हाल है, स्कूल कैसा जा रहा है? बेटा कहता है बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा, माँ पूछती है। बेटा कहता है बहुत अच्छा रहा। तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ऐसी बातें जो घरों में होती हैं। अच्छा आज रात तुमने कहीं जाना तो नहीं? मैंने जाना है। कहीं कहाँ जाना है? अब आप पूछे क्यों जाना है, किसके साथ जाना है, कहाँ जाओगे? वाकई तुम दोस्त के घर जा रहे हो, कहीं तुम और नहीं जा रहे, ये नहीं जा रहे? ज्यों ही आपके ये सवाल शुरू होंगे ना, आप देखेंगे वही बच्चा जो आपसे शुरू में बड़ी प्यार की बातें कर रहा था ना, वो इरिटेट हो गया। तो तहकीक करने का अंदाज जो होता है ना, वो इस तरह का नहीं करना चाहिए कि अगले को ये लगे कि आप उस पर शक कर रहे हैं। ये वक्त नहीं होते, जब कोई कहता है ना मैं जा रहा हूँ, तो फिर नहीं वक्त होता कि पूछें क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्या, जाओ अभी जाओ, बाद में बात करेंगे कि क्यों गए थे, खाना खा लो, बाद में बात करेंगे कि ये खाना था कि नहीं खाना था। याद रखे, जब हम कुछ और सोच रहे होते हैं और दूसरा कुछ और सोच रहा होता है, कभी कम्युनिकेशन नहीं होगी। दो बेहतरीन अच्छे लोग भी साथ नहीं रह पाते बाज़ूकात, वजह ये होती है हर बंदा अपने फ्रेम ऑफ माइंड से सोच रहा होता है। करें क्या, खुलासा करती हूँ, रैप अप करते हैं इस बात को कि आप किसी के साथ भी अच्छी बात करना चाहते हैं, आप उस बंदे को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो पहली बात है कि आप उसकी बात को हकीकी तौर पे सुने, कानों से, आंखों से, बॉडी एक्शन से, अनअटेंडेड तवज्जो दीजिए, बेहतरीन तरीके से सोचें। इन पांचों चीज़ों को निकाल दीजिए अपने अंदर से। इसको आप तीन तरीके से कर सकते हैं। सुनने का काम आंखों, दिल और कानों से होगा। सिर्फ दो कानों से सुनना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लोग, वो सिर्फ 7% तक किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। आपको पता है हमारी बात दूसरे तक जब पहुंचती है ना, 40% हिस्सा हमारे उतार चढ़ाव पे है। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं इस वक्त बोल रही हूँ, आपको ना भी पता चले ना, रिकॉर्डिंग हो रही हो तो वो देखें, कभी ऊपर आवाज़ जाएगी, कभी नीचे, यूँ जाएगी। मेरे एक्सप्रेशन से आपको बात समझ आती है, किस पे जोर देना है, किसको प्यार से करना है, किस बात को सख्ती से करना है। और अब मैं इसकी जगह ज़रा आपको एक और स्टाइल बनने का बताती हूँ, जो बातें अभी मैंने बताई हैं इसमें से कोई बात मैं आपके साथ यूं पढूं। तफ्तीश किसी को अच्छी नहीं लगती, बस अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा सवालात करने हैं तो ये अच्छा नहीं लगेगा और वो इसको बुरा मानेगा, और देखिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें, और इसके बाद जाए कि बच्चा आपसे बदजन हो जाएगा और वो घर से भाग जाएगा और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या आपको मेरी बात में से कुछ भी पल्ले पड़ा? तो लिखें ये बात, लव सिर्फ 7% होते हैं, 7% आपके घर वाले आपसे बातें करेंगे, या आपके स्टूडेंट्स, या आपके कुलीग, या साथी। 40% चीज़ें आप जज्बात से देंगे, उतार दें, गर्मी, मोहब्बत लाएं, गुस्से का, गुस्से के लिए लफ्ज़ कभी नहीं इस्तेमाल करें, बात ऐसी करें कि अगले को समझ आए आपकी बात, क्या कहा, बस ये 6-7 जुमले कहने से बहुत बड़ा लफ्ज़ है, क्या कहा आपने, बस खामोश हो जाए। मैंने देखा है कई चीज़ों को, मेरे हस्बैंड है तो ये बहुत कम बोलते हैं, मैंने इनसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मैनर सीखे हैं इस मामले में। इन्होंने एक दफ़ा किसी से कोई काम करवाया वेबसाइट का, अब जो उन्होंने कहा वो नहीं किया, या बहुत लंबा खींच दिया, या जो भी थी बातें वो सारी थी, मुझे समझ आ रही थी कई दिनों महीनों से ये लगे हुए उनके साथ। एक दिन फाइनल उनकी बातें मुझे भी नहीं बताते, लेकिन मैं पास थी तो मैं सुन रही थी ना। अब मैं इनकी लड़ाई, जिसको हम कहते हैं ना लड़ना, या जिसको आप कुछ कह सकते हैं, उसका अंदाज बताती हूँ। अब आप देखिए कि एक बंदा जिसने आपको उम्मीद दिलाई मैं ये काम करूँगा और इतने वक्त में करूँगा और ऐसा करूँगा, वो नहीं कर रहा होगा उसने। इन्होंने कहा आई एम गिविंग यू 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर ये तुम सर्वर पर डाल दो, तुमने जितने भी पैसे लगाए ना एडवर्टाइज करके, इतना पैसा लगा के तुमने अपने आप को किया हुआ कि हम आपकी वेबसाइट्स बनाएंगे, तो फिर आई विल स्टार्ट टेलिंग पीपल कि डोंट ट्रस्ट ऑन यू। यानी 2-3 सीधे जुमले जिससे उस बंदे को हाथ पांव पड़ गए, वही काम जो रोज आज कर दूंगा, आज कर दूंगा, कल आज नहीं तो औरत, मैं खुद देख रही थी 2 महीने से लटका हुआ मामला। इन्होंने कहा कि लुक एट दिस टाइम, तो मैं तुम्हें 2 घंटे बाद फोन करूंगा, मैं चेक करूंगा, अगर तुमने वो नहीं किया ना तो मैं लोगों को बताना शुरू कर दूंगा कि तुम पे ट्रस्ट ना करें। और साथ ही एक जुमला इन्होंने उसको बोला कि डू यू वॉन्ट टू लूज योर रेपुटेशन ओनली बिकॉज ऑफ 1 कस्टमर। तुमने इतना जो पैसा लगा के वेबसाइट को एडवर्टाइज किया, लोग रखे मैं उधर काम करा, क्या सिर्फ 1 कस्टमर की वजह से तुम अपनी ये सारी रेपुटेशन लूज करोगे? बड़े आराम से बात की और ये कोई समझ भी नहीं सकता कि ये नाराज हैं। और यकीन करें वही बात हुई, 2 घंटे के अंदर अंदर वो काम हो गया जो शायद पिछले कई हफ्ते से वो आज होगा नहीं हुआ। लोग सीधी बात नहीं सुनते, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, कुछ डंडे के जोर पे चलते हैं कुछ प्यार के जोर पे चलते हैं। जो डंडे पे चले उसको डंडा पे लगाएं, ये भी लिखें बात। कुछ लोग प्यार के साथ बात सुनते हैं, आप उनसे प्यार करते जाएं काम करते जाएंगे। कुछ प्यार को आपकी नजायज नरमी समझते हैं, ले ले उनसे काम, आप देखिएगा वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। मैं भी सीधी हो जाऊंगी अगर कोई मेरे साथ ज़्यादा सख्ती कर देगा या मेरे साथ नरमी करेगा। तो लोगों को समझें कि ये ज़ुबान कौन सी समझते हैं। अगर आपके 4 बच्चे हैं ना, यकीन करें उन 4ों से अंडरस्टैंडिंग करने के 4 डिफरेंट वेज होंगे आपके पास। कोई लाड समझता है, कोई चापलूसी समझता है, कोई गुस्सा समझता है, कोई आंख की घूर समझता है, और किसी को आप सिर्फ घूर के देखें तो वो रोना शुरू कर देगा, आपने मुझे ऐसे क्यों देखा, आप मुझसे प्यार नहीं करती। मिसाल देती हूँ कि ज़ख़म है ना, ज़ख़म को डॉक्टर साफ़ करता है, तो क्या उस ज़ख़म को उन्हीं हाथों से साफ़ करेगा कि जिसके अंदर पस पड़ी हुई है, उसको नरम हाथों से करना पड़ेगा ना। लेकिन इसी तरह जिस्म के अंदर कोई एक ऐसी ट्यूमर है या कोई ऐसी चीज़ है बढ़ गया, उसको काटना है, उसको सख्ती से काटेंगे ना। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या आप लोगों को समझें ये नरम हाथों से चलने वाला है या गर्म से चलने वाला है। तो बहरहाल इस तरीके से आप लोगों की बात दिल आंखों कान से सुने, अपने जज्बात से सुने। 53% दूसरों की बात जो हम तक आती है ना, उसकी जिस्मानी कैफियत से आती है। मसलन बात करते हुए आंखों में आंसू आ गए, हिल रहा है, इधर उधर देख रहा है। मसलन देखें अब एक ही जुमला है, अगर आप मुख्तलिफ अल्फाज पर जोर देकर एक ही जुमले को मुख्तलिफ एंगल से बदले, जैसे एक जुमला है मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे रवैये में कोई मसला है। अब ये एक जुमला है, मैंने तो अपने हिसाब से पढ़ा ना, आप इस जुमले को मुख्तलिफ तरह पढ़ें। अब मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आप इस जुमले को कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा कोई रवैया ऐसा ख़राब है, मैंने और तुमने, इसके ऊपर अगर आप जोर दें तो बात बदल जाती है। दूसरी तरफ आप ये कहें मैंने ये नहीं कहा कि तुम समझो, टोन बदल गई ना। या फिर आप अपने कहें मैंने ये नहीं कहा कि तुम ये करते हो, फ़र्क है ना, मैं और तुम को, किसी को ऊपर करें किसी को नीचे करें, सोच फ़र्क हो रही है ना, बॉडी एक्शंस के साथ फ़र्क होता है। तो बहरहाल लोगों के अंदर झांकें। मैंने एक बड़ा खूबसूरत रात को ही शायद कहीं पढ़ा जुमला कि इफ़ यू वॉन्ट टू से सॉरी तो लुक इन द आईज ऑफ द अदर पर्सन। आप कह रहे हैं ना आई एम सॉरी, तो साथ आप उसकी तरफ देख के कहें, ये भी करना होती है, लोग देखते कोई नहीं, उधर मुझे सॉरी सॉरी कहते हुए आप अगली की तरफ देखें ताकि आपको खुद भी शर्मिंदगी का एहसास हो। तो बहरहाल गौर से सुनिए दूसरों की बातें। इसमें एक और चीज़ जो है वो क्या है, दूसरे की दिली कैफियत को पढ़ें, इमोशंस को रीड करना सीखें। सिर्फ अच्छा सामे बनने से बात नहीं बनती जब तक के दूसरे के दिली जज्बात को ना समझें। आप देखें कि वो क्या कह रहा है, किस तरह कर रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ है। अगर आप सब्ज़ रंग के शीशे लगा लेंगे ना, आपको सूरज की रोशनी सारी सब्ज़ लगेगी, आप उसके वो शीशे उतार देंगे ना तो बिल्कुल दुनिया का रंग फ़र्क होगा। इसी तरह हम अपने दिल के रंग से दुनिया को देखते हैं। वो कहते हैं ना कि हम उदास हैं तो सारा शहर ही उदास क्यों लगता है, हम खुश हैं तो सारा शहर हमें खुश क्यों लगता है। उसकी वजह यही होती है कि हम अपने दिली जज्बात से देखते हैं। हम अंदर से खुश होते हैं तो हम बड़े सबको खिले हुए दिखेंगे, हमें गुस्सा होगा सबको दिखेगा हमें गुस्सा आता है। तो दूसरे का इंशाल्लाह आप जब दिल को टटोलेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह एक और चीज़ है, और वो क्या कि दूसरे की बात की तर्दीद ना करें। बहुत लोगों को बुरा लगता है अगर आप दूसरे की बात गौर से सुनते हैं मगर हकीकत में उन्हें समझने की ख्वाहिश नहीं रखते, तो ये सोचेंगे कि शायद आप उनसे मुखलस नहीं हैं। आप दूसरे की बात को निगेट करने की बजाय ये कि नहीं, राइट, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे यहाँ हम कोई भी काम करते हैं ना, तो एक जुमला सिखाया हुआ है कि किसी को अगर ये कहना है ना कि ये चीज़ गलत है, तो लफ्ज़ गलत नहीं बोलना, आपने क्या कहना है, ये ठीक नहीं है। बात एक ही है ना, आप कहते आपने गलत किया, तो आप कहते नहीं आपने ठीक नहीं किया। ठीक कहने से आप देखेंगे दिल उसका नरम हो जाएगा, ये लग बात है उसके बाद नहीं है, लेकिन जब आप गलत कहेंगी ना तो एकदम उसके दिमाग में जोश आएगा और वो खोलने लगेगा आपकी बात पे। फिर इसी तरह एक और टिप जो आपको अच्छी कम्युनिकेशन में फ़ायदा देगी कि दूसरों की बात पर गौर करें, अकेले में बैठ के ठंडे दिमाग से सोचें, इसको कहते हैं हमारी ज़ुबान में। ज़रूरी नहीं कि तोते की तरह हर बात अगले बंदे की एन रिपीट करें, बल्कि दूसरे को वो बात कहने से पहले सोचें, वाकई ये बात ऐसी थी। मिसाल है कि आपकी बेटी को काम कर रही थी, आप एकदम गए, आपने देखा उसने किचन फैलाया हुआ, आप चीखने लग गए, अब उसने आगे से आपको कोई एक जुमला कह दिया, अच्छा जैम फिर मैं नहीं करती, अब ये जुमला, और पाँव पटकती भी अपने कमरे में चली गई। आप फौरन बाप को, देखा इसने मुझे क्या कहा, बेटे को कहते हैं, नहीं, बाप को, बेटे को, अपने शौहर को, किसी को कहने से पहले एक दफ़ा सोचें इसने ये जुमला क्यों कहा है। आज पता नहीं कितने दिल से केक बनाने खड़ी हुई थी, कोई बात नहीं फैल गया ये, क्या शुक्र है खड़ी तो हो गई थी, शायद मैंने इसको ना कहा होता तो ये बात मैं साफ भी कर देती। तो उसके जज्बात लेंगे ना आप, देखेंगे फौरन दूसरे को बात कहने से पहले आपके दिल में नरमी आ चुकी होगी, चलो छोड़ो मैं ऐसे नहीं करती, तो इंशाल्लाह इससे भी मामला जो है वो बेहतर होगा। फिर इसके बाद एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो बहुत मामलात में कम हो जाती है, और वो क्या है, कम्युनिकेशन करने। जहाँ किसी बंदे से आपका बिगाड़ हो कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, ये तो गोल्डन वर्ड्स में लिखने वाली चीज़ है। ज़िंदगी के इस आईने में धुंध आती है, चलते हैं तो पाँव पे रेत जमती है, रेत पाँव पे मिट्टी चलेगी, सब कुछ आएगी, लेकिन आपका दिल जहाँ जिससे मैला होने लगे, एक्सक्यूज़ मी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं आपके साथ अकेले में बैठना चाहती हूँ, आप बताएं आप कब बेहतर तरीके से सुन सकेंगी, टाइम सेट करें फिर बैठ जाएं, फिर हो पड़े, यकीन करें इतने बंद दरवाजे खुल जाएंगे सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। घर टूट जाते हैं कम्युनिकेशन ना होने की वजह से। मैं एक ऐसे फैमिली मैटर को जानती हूँ, शादी हुई, अच्छा हो गया सब जो भी होता है, शादी के बाद लड़का चला गया बाहर, लड़की रह गई ससुराल के साथ, अगली कहानी आप खुद ही समझ गए होंगे अगर आपका मुशाहिदा स्ट्रांग है। वही मामला हुआ जो अक्सर होता है, लड़का दूर था, लड़की माँ के पास थी, माँ का वो बेटा भी अकेला था, खैर से बड़ी वैसे मजलूम होती हैं वो औरतें भी और वो सासें भी जिनका एक मियाँ और एक मियाँ, तो सबका एक होता है बेटा एक हो, किसान मकसद ये हुआ कि हालात बिगड़े। अब हुआ क्या कि मियाँ बीवी के क्या बिगड़ने थे, थोड़े दिन वो रहा फिर चला गया, वो अच्छे ही थे बेचारे, माँ ने पट्टियाँ पढ़ाई जो भी होती हैं, इसने अब ये कर दिया, अब इसने ये नहीं कहा, इसके मैको ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, नतीजा क्या हुआ कि बात बढ़ी, कुछ भी कहानी हुई फिर किस्सा मुझसे कि लड़का भी बीवी के बारे में केयरलेस हो गया, सिर्फ इस सोच में मेरी माँ है तो वो ठीक कह रही है, गलत भी है तो ठीक है क्योंकि मैं एक बेटा हूँ। खैर बात बढ़ती गई, लड़की वाले उन्हें अपनी लड़की को घर बुला लिया कि हमने इसकी माँ की नौकरी के लिए थोड़ी भेजी थी, हमें वापस दे दो, आएगा लड़का तो हम दे देंगे वापस, थोड़ी सी चपकलशें हुई। उसके बाद एक ऐसा मोड़ उनका देखा गया कि लड़की माँ बाप के घर में, लड़का आके है वापस, वो दोनों मिलना चाहते हैं लेकिन दोनों मिलने नहीं दिए जाते, और घर टूट गया। वो लड़का कहता था मुझे एक घंटे के लिए मेरी बीवी के साथ अकेले दे दे मुझे तो हमारा घर बच जाएगा, उधर लड़की के बाप की कहरत आ गई, इधर लड़के की माँ की आ गई, कहानी ख़त्म हो गई। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहती हूँ कोई आपकी बेइज्जती करे, कोई आपसे लड़े, कोई आपकी बात ना माने, आपका दिल नहीं कर रहा उसकी शक्ल देखने को, फिर भी 5 मिनट छोड़ने से पहले भी बैठे, और तस्री हम बेहसान, किसी को छोड़ें तो साथ बैठ के बताएं कि दैट्स द रीज़न आई एम लीविंग, ये वजूहत है कि मैं आपको छोड़ रही हूँ, आइंदा ना किसी के साथ ये करना, कह के जाए, बता के जाए। इतने बुजदिल वो लोग होते हैं जो हाइड कर लेते हैं अपने आप को, कम्युनिकेशन नहीं करते, शक्ल नहीं दिखाते। खानदानों में तो इंसान कहीं ना कहीं मिल जाता है। आप अपने दोस्तों साथियों में कभी देखें, अल्लाह ना करे किसी की आपकी हुई हो, लेकिन देखिए बाज़ लोग शक्ल नहीं देखते, शादियों में एक दूसरे को मिलेंगे, मुंह उधर कर लेंगे। कहाँ तक चलोगे, आखिर क़यामत के दिन तो मिलोगे। इस तरह किसी को छोड़ें कि दोबारा मिले तो सलाम कर सकें, तो कम्युनिकेट करके छोड़ें। कोई रिश्ता तोड़ना ना अपने, कम्युनिकेट करके तोड़ें। मंगनी छोड़नी है, कम्युनिकेट करें। किसी इंसान को आपने कोई उम्मीद दिलाई थी, जॉब छोड़नी है, ये बहुत इशू है हमारे पाकिस्तानी कल्चर का, एक बहुत बड़ा इशू है। आते हुए 10 प्रोटोकॉल, जाते हुए एक भी नहीं। किसी बाहर बच्चे को कह देंगे अब मैंने नहीं आना, और वो भी को कह दे, बस लोग फ़ोन नहीं पिक करते। इस तरह मैं एक ब्रदर को जानती हूँ, बिज़नेस करते हैं, ज़रा उनको लगता है ना कि किसी ने मेरे से पैसे मांगने हैं या जो सौदा मांगा था अभी तैयार नहीं, उनकी इतनी बुरी आदत है वो फ़ोन बंद कर देते हैं, उसका नंबर देखा कट बंद कर दे। उनके साथ डील करने वालों को इस पर गुस्सा आता है कि हाजी साहब फ़ोन तो उठा लिया करें, कह दें नहीं हुआ, ये फेस ना कर सकना, फिर बात बिगड़ जाती है। और जो बंदा पिक नहीं करता, जवाब नहीं देता, दैट मीन कि वो तो आपको और मुगालतों में, आप नहीं कर सके काम, कोई बात नहीं, कौन हमेशा काम करता है, आप नहीं आ सके, कोई हमेशा नहीं आ सकता। एक मिनट का फ़ोन तो पिक कर लीजिए ताकि अगले बंदे को आपके बारे में कोई फिक्र ना लग जाए, तो आप देखेंगे कि ये एक पूरा आर्ट है। मैं तो सोच रही थी हम इस पर ऐसे ही गुजर जाएंगे, लेकिन मुझे बातें बताते हुए एहसास हो रहा है कि हम इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा मात खाते हैं, हम समझते नहीं हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आप कहीं देख ले, आजिर और अजीर यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कोई झगड़ा हो, कोई रिश्तेदारियों के मामले हों, इस तरह की बातें होती हैं। समझिए, इंसान बहुत खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत कुछ दिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला जब आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। फिर इस तरह इसमें और बहुत सारी टिप्स हैं, अब मैं और वक्त देना नहीं चाह रही इस टॉपिक को कि फिर हम इस पर मज़ीद आगे जाएँ, लेकिन सारी बात का खुलासा यही है, कम्युनिकेट करें, अगले की बात गौर से सुने, किसी की हरकत बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखें, हार्ट इमोशंस को सीखें, जज्बातियत कहाँ है, किसी शख्स की बात का वही मफहूम लें जो उसने कहा था। बात तो बस सिर्फ इसलिए गलत होता है, आप ये जुमला नोट करें, मैंने ऐसे तो नहीं कहा था। ख़ानदानी ताल्लुकात में ये जुमला कितनी दफ़ा हम बोलते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। आधा वक्त जब सफाइयाँ पेश कर रहे होते हैं या सफाइयाँ ले रहे होते हैं लोगों की, इसकी वजह यह कि आप अंडरस्टैंड नहीं करते। फिर इसी तरह कम्युनिकेट करें। फिर एक और इसमें खुलासे की बात कि जब बोले तो बीच में रुकें ताकि दूसरा भी बोल सके। बोलें कब, जब आपके बोले बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता। फिर इसी तरह हमेशा दूसरों को हकीकी फ़ायदा देने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि आपके बारे में लोगों की राय बदल जाएगी। आज से लेने की बजाय देने की नीयत कर लें, आप देखेंगे लोगों को आपसे हकीकी मोहब्बत हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दूसरों को समझने की तौफीक दे, और इंसानों को समझे बगैर उनके साथ जीना ये जहन्नम है, ये सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा है। अजीरन हो जाती है ज़िंदगी उस इंसान की जो किसी ऐसे इंसान के पल्ले पड़ गया जो उसकी ना समझे ना ये उसकी समझे। इसी को कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग होना, एक लेवल हो, कफ़ कहा गया उसको हदीस में कि शादियाँ करो तो कफ़ देखो, मेयार एक है, मेंटल लेवल एक है, एक बंदा 10वीं सीढ़ी पे खड़ा है और एक नीचे खड़ा है, सारी ज़िंदगी वो फ़र्क ही रहेगा। तो बहरहाल इनका सवाल बड़ा अहम सवाल है कि बच्चा घर से जा रहा था और आपने तहकीक नहीं की वो कहाँ जा रहा है, फिर तो वो चला जाएगा, आएगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो समझिए एक बात को, हमारे यहाँ एक मिजाज दिखता है और वो क्या कि जब कोई चीज़ सर पे पड़ती है ना तो हम बहुत सीरियस लेते हैं। रात गई बात गई, जब वक्त गुजर जाता है तो टालते हैं। मेरी नज़र में अगर एक बच्चा एक काम करने के लिए तैयार है, और एज का फ़र्क है ना, छोटा बच्चा या यंग है, हम इस वक्त जो देख रहे हैं मोस्ट लाइकली लग रहा है कि टीन एज हो गया, 14-16 साल का दोस्त बाहर खड़ा, प्लानिंग पूरी हो चुकी है, 6 दोस्त किसी होटल में बैठे हैं, माँ ने रोक लिया, बहन ने रोक, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इधर आओ, पूछ के बताओ, नहीं जाने दूंगी, चाबी लगा ले, यकीन करो वो दरवाज़ा तोड़ देगा। उसके दोस्त बाहर जाएंगे, दोस्त उसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर है, आप उसके दोस्त को ही पूछते हैं वो किधर जा रहे हो, ये नहीं बता रहा, तुम बताओ, यकीन करें वो उसका दिल चाहेगा कि आपको छोड़ दे वो, ये गलत वक्त, जाने दो, अल्लाह पे तवक्कुल करे, अल्लाह तो इसकी खैर करना, चला जाए, हो के आ गया ना, अब आग लगी हुई इस वक्त पानी डालेंगे तो और उबाल आएगा। अब इसको एक ख़तरे का अलार्म समझें, फिर बाद में अगला दिन दूसरा दिन बात कहाँ गए थे, क्या हुआ था, कैसे गया, बेटा ये अच्छी बात है, इस वक्त को पूछने का फ़ायदा था, बाहर दोस्त खड़े थे, माँ हो ना तुम्हारी, मुझे फिक्र है कि तुम कहीं गलत जगह ना जाओ, तुम्हें ठंड ना लग जाए, ये ना, जिस बात से करें। जिस वक्त पहले ही जोश पड़ा हुआ है उस वक्त देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। मकसद है कि वो रुक जाए, ये नहीं मकसद कि वो और पक्का हो जाए। नेक्स्ट टाइम फिर वो घर ही नहीं आएगा, वो स्कूल से चला जाएगा उधर। बात वैसे, इसको हमारे मुहावरे में कहते हैं जलती पर तेल डालना। यहाँ पे रुकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।